पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही को चिढ़ाते हुए परी हँसती है। अर्जुन रूही को जय के लिए एक उपहार देता है। रूही अपनी कक्षाओं के लिए निकल जाती है। दिशा रोती हुई अनाथाश्रम में बैठ जाती है और देवांश के ऑफिस जाती है। देवांश गुस्से में काम कर रहा था और दिशा के आने का इंतजार कर रहा था। दिशा ऑफिस में आती है और देवांश उससे बात करता है। देवांश दिशा को बताता है कि उसका इस्तीफा रद्द कर दिया गया है। दिशा गुस्से में कहती है कि वो जेल में रहना पसंद करेगी। देवांश दिशा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। देवांश दिशा को बताता है कि वो अब उसके साथ कमरे में रहेगी और जब वो चाहेगी तो वे साथ काम करेंगे। अब आगे। चैप्टर 162। अब आगे। इतना बोल वे दिशा के गालों पर किस करते हुए मुस्कुराते हुए उसे देखने लगते हैं। वहीं दिशा देवांश के पागलपन को जैसे जैसे देख रही थी वैसे वैसे वे पहले से भी और भी ज्यादा हैरान होती जा रही थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कहाँ गलती हो गई या उसने कब देवांश को कुछ ऐसा हिंट दिया कि वे उसके बारे में इस तरह की सोच रखता है। वे उसे इस कदर पसंद करने लगा, वे उसके लिए इस कदर पागलपन पे उतर आया। वे तो हमेशा चुपचाप ऑफिस आई, काम करते वापस चली जाती थीं। उसने तो कभी भी देवांश को ऐसी कोई उम्मीद नहीं दी कि वे उसे पसंद करती है या उसे चाहती है, तो देवांश उसे इस नज़र से कैसे देख सकता था। इस बात को सोच सोचकर वे पागल होती जा रही थीं। वहीं देवांश जब दिशा को यूं एकटक देखता हुआ पाता है तो मुस्कुराते हुए कहता है, गुड गर्ल, मुझे मालूम है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस ये मानने से डरती हो, पर कोई बात नहीं, गुड गर्ल, मुझे है कि तुम भी अपना प्यार जल्द ही एक्सेप्ट कर लोगी। देवांश की बात सुनकर दिशा गुस्से में बोली, सर मैंने कहा ना कि मैंने कभी भी आपको उन नज़रों से नहीं देखा, तो आपको प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने आपको ऐसा हिंट कब दिया जो आप मुझे इन नज़रों से देखने लगे और मेरे लिए इस तरह पागल हो गए। दिशा की बात सुनकर देवांश दिशा की आंखों में देखते हुए बोला, गुड गर्ल, मुझे तुम्हारे पीछे पागल करने के लिए तुम्हारा हिंट देना ज़रूरी नहीं था। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी सादगी ही काफ़ी है मुझे तुम्हारे पीछे पागल करने के लिए, मुझे तुम्हारा दीवाना बनाने के लिए। देवांश की बात सुनकर दिशा अपनी नज़रें फेरते हुए बोली, सर आप पागल हैं, पूरे के पूरे पागल हैं, मुझे आप जैसे पागल के साथ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी भी एक लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ जीने दीजिए, क्योंकि यूं ज़बरदस्ती करके किसी के मन में किसी के लिए प्यार नहीं जगाया जा सकता, इसलिए सर प्लीज़ अपना ये पागलपन छोड़िए, आपको मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी जो आपको खूब सारा प्यार करेंगी, आपको अपने दिलोजान से पसंद करेंगी, लेकिन प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, प्लीज। दिशा की बात सुनकर देवांश दिशा के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, गुड गर्ल, अगर तुम्हें पागल लगता है तो सुन लो, हूं मैं पागल, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अभी तक तुमने मेरा पागलपन पूरी तरह से अपने लिए देखा नहीं है, वरना तुम मुझे किसी और लड़की से शादी करने को नहीं कहती। गुड गर्ल, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी लड़की मुझे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और मुझे प्यार भी करेगी, तो मेरे लिए वे लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम हो, अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में ना कोई लड़की आ सकती है और ना ही आएगी। इतना बोल वे अपनी जगह से खड़ा हो जाने लगता है। वहीं दिशा देवांश के पागलपन को देखकर समझ चुकी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वे उसे जिंदगी भर इसी कमरे में बंद करके रख सकता है। जिसे समझ दिशा अपने बहते आंसू पोंछते हुए गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए देवांश को रोकते हुए कुछ ऐसा कहती है, जिसे सुन देवांश के चेहरे पर एक पागलपन से भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के ऑफिस में। रुद्र अपने कैबिन में बैठा अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां तेजी से चला रहा था, तभी वहां अमन आ जाता है और रुद्र को देखते हुए कहता है, सर जिन जिन लोगों ने कल आपकी गन फैक्ट्री पर हमला करने की कोशिश की थी वे सभी पकड़े गए, अब उनका क्या करना है? अमन की बात सुनकर रुद्र के हाथ जो लैपटॉप पर तेजी से चल रहे थे वे रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वे अपनी चेहरे पर से खड़े होते हुए बोला, उन्हें तो ऐसी सजा मिलेगी कि वे मरने के बाद भी कभी रुद्र सिंघानिया से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। रुद्र की बात सुनकर अमन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वे समझ गया था कि रुद्र उनके साथ क्या करना चाहता है और रुद्र की सजा कितनी खतरनाक होती है। वहीं रुद्र इतना बोल अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए वहां से बाहर निकल जाता है, जिसे देख अमन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एक घंटे बाद रुद्र की कार एक जंगल में आकर रुकती है और वे अपनी कार से निकल उस जंगल में बनी गुफा के अंदर चला जाता है। वहीं रुद्र को अंदर जाता हुआ देख अमन भी भगवान का नाम लेकर अंदर की ओर चला जाता है। ऐसा नहीं था कि अमन यहाँ पहली बार आया था। वे रुद्र के साथ यहाँ कई बार आ चुका था, मगर वे जब जब यहाँ आता था उसे थोड़ा डर लगता था, क्योंकि अंदर का नजारा काफी डरावना था, जिसे देख अमन चाहकर भी खुद को डरने से रोक नहीं पाता था। उसका बस चलता तो वे रुद्र के साथ कभी भी यहाँ पर नहीं आता, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि ये जानते हुए भी कि अंदर क्या होने वाला है, उसे इस जगह पर रुद्र के साथ आना ही पड़ता था। वे गुफा बाहर से देखने में जितना छोटा था, अंदर से वे उतना ही ज्यादा बड़ा था। उस गुफा के अंदर अमन जाता है तो देखता है कि हमेशा की तरह ही उस गुफा के अंदर कहीं किसी की कंकाल पड़ी हुई है, तो कहीं किसी आदमी का कटा हुआ सिर लटका हुआ है, तो कहीं किसी की आंखें शीशे में कैद हैं, तो कहीं किसी का हाथ और पैर यूं ही कटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है। ये सब देख अमन भगवान का नाम लेकर जल्दी से अंदर भाग जाता है, क्योंकि इस गुफा में हर जगह किसी न किसी की लाश पड़ी हुई या लटकी हुई थी, जिसे कोई जितना भी देखे उसके अंदर डर भर जाएगा, और अगर कोई नॉर्मल इंसान इस नजारे को देख ले तो पक्का वे ये सब देख वहीं मर जाए, क्योंकि इस गुफा का नजारा था ही इतना डरावना और भयानक जो किसी के भी दिल की धड़कनें रोकने के लिए काफी था।
लेकिन रुद्र इसी गुफा के अंदर जा अपने किंग साइड चेयर पर आराम से बैठा हुआ था। जैसे उसे इस जगह पे और लोगों की लाशों को देख एक अलग ही सुकून मिल रहा हो, वे बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने चेयर पर बैठ जाता है, जिसे देख अमन आकर रुद्र के चेयर के पीछे खड़ा हो जाता है। वहीं वहां के बॉडीगार्ड रुद्र को देखते ही उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। उसके बाद कुछ आदमियों को लेकर रुद्र के सामने खड़ा कर देते हैं, जिन्हें देख रुद्र के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है।